नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। राज्यों को जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी तेल शोधन कारखानों उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर प्रभाव के बावजूद भारत में एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है। इंडियन ऑयल ने कहा कि उसने रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी है और वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित कर रही है। यह वितरण मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के शुरू होने से पहले के सामान्य स्तरों के अनुरूप है। इंडियन ऑयल ने कहा कि वर्तमान में लगभग 87% बुकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक में किए गए सुधार कानूनों को सरल बनाने, व्यवसाय और व्यक्तियों पर कानूनी नियमों, सरकारी नीतियों तथा कर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय, वित्त और प्रशासनिक दबाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने यह बात कही।
हमने एक ही कानून के अंतर्गत संसद के 79 अलग अलग अधिनियमों से संबंधित 1000 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सरल बनाया है और आम आदमी, लघु और मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, स्टार्टअप और व्यवसायों के लिए इसे आसान बना दिया गया है। वास्तव में ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
In our journey towards Viksit Bharat 2047.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने मालदा जिले में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मुख्य षड्यंत्रकर्ता सहित 2 लोगों को सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मुफ्क करूल इस्लाम के रूप में की गई है। पुलिस अपर महानिदेशक के जयराम ने बताया कि मुफ्क करूल इस्लाम उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहार का रहने वाला है और वर्तमान में कोलकाता में रह रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सौंप दी है। इससे पहले कल सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव करने के मामले का संज्ञान लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एल मुर्गन अविनाशी से, डॉक्टर तमिल साई सौंदर्य राजन मायलापुर से और वान थ्री श्रीनिवासन कोयंबटूर उत्तर से चुनाव लड़ेंगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव इस महीने की 23 तारीख को होगा। विशाखापत्तनम में अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस तारागिरी को आज नौसेना में शामिल किया गया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का चौथा पोत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की पत्तन संपर्क परियोजना के लिए लगभग 1,32,00,00,000 रुपए मंजूर किए हैं। यह देश में पत्तन विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली हमारी श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज हम राजस्थान के स्वामी ब्रह्मादेव जी महाराज से बातचीत करेंगे। स्वामी ब्रह्मादेव जी महाराज को समाज सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह चर्चा आज शाम 5:10 पर 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित की जाएगी। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।